ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان گرامی قدر، حاضرین اجتماع، آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں. اچھی باتوں کا سننا بھی اچھا ہے، لیکن اچھی باتوں پر عمل کرنا بہت اچھا ہے، اور اللہ نے انسان کو اچھا بننے کی خواہش دی ہے، چاہے بڑا ہو یا بڑا. بچے سے کہتے بھی اچھے بنو گے، وہاں کچھ ہوتا ہے کہ ہاں ہم اچھے بنیں گے، کیونکہ اچھا سب کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ اچھا کا رنگ بھی اچھا ہے، دودھ اچھا، مٹھائی اچھی، اچھی کا اور اچھا کا جو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. ایسی جو آدمی اچھا ہوتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے، تو کون اچھا نہ بننا چاہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے لوگ کہ یہ اچھا آدمی ہے تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ خود سن رہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے. اور خوش ہونا چاہیے کہ لوگ کسی کے مقابلے اچھا گمان چاہے، جب کسی کو پہلے کھانے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور اس کے اندر بنیادی اچھائی ہوتی بھی ہے، ضروری بنیادی اچھائی ہوتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ قیامت میں اچھا اٹھاتا ہے. ہاں اگر لوگ دھوکے میں اچھا سمجھ رہے ہیں، بنیادی نہیں ہے اس کے اندر اچھائی بھی، تو پھر اچھا سمجھنے سچا ہونی ہے، کچھ اچھائی ہونی چاہیے بنیادی طور پر. جیسے عمران دیندار آدمی ہے، تو دیندار آدمی بڑا اچھا آدمی کہا گیا تو دینداری میں سب سے پہلے عقیدہ آئے گا، اگر عقیدہ اچھا ہے تو دیندار ہے، اور نماز پڑھنے والا ہے تو دیندار ہے، روزہ رکھنے والا ہے تو دیندار ہے، پیسے والا ہے زکات دیتا ہے تو دیندار ہے، اور حج کر چکا ہے پیدا ہونے کی وجہ سے تو دیندار ہے، بنیاد ہو گئی. بنیاد اس کے اندر ہوگی تو لوگ کہیں گے اچھا ہے تو اچھا ہے، لیکن بعد میں بھائی دھوکا ہو جاتا ہے لوگوں کو، خوشی کی صورت ہو جائے اور لوگ اس کو اچھا کہنے لگے، لیکن بنیادی طور پر وہ اچھا نہ ہو تو شہرت سے اچھا نہیں ہوتا. شہرت کو بعض دفعہ خراب سی بھی ہو جاتی ہے اچھی، لیکن وہ اچھا ہوتا نہیں. اسی وجہ سے اگر آدمی خراب ہے تو شہرت اچھی ہے، شہرت کا دروازہ اٹھا جائے گا اور آدمی کا اصل ڈھانچہ سامنے آ جائے گا، اور اگر واقعی اچھا ہے تو اس کی شہرت میں تو اچھائی بڑھتی چلی جائے گی اور شہرت بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ اللہ کا محبوب تو پہلے تھا اس وجہ سے شہرت کی، اور پھر اس کو سارے لوگوں کا محبوب بن جائے. تو جو محبت عزت آتی ہے، وہ پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ جو محبت زمین سے آتی ہے وہ اکثر میں جلتی ہے، آسمان سے محبت آتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے محبوبیت آتی ہے تو بڑھتی ہے، لیکن بندوں کی طرف سے آتی ہے تو ضروری نہیں بڑھے. جب اللہ تعالیٰ اوپر سے کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی محبت پیدا فرما لیتا ہے، اور پھر وہ آدمی اچھے لگتا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اچھائی پھیلتی ہے، یعنی اس کی اچھائی نکالتی ہوتی ہے. اس کا اچھا ہونا گویا کیوں سمجھ لیں، ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے قریب چلا جائے وہ اچھا ہو جائے، تو یہی علامت ہے کہ وہ اچھا ہے. کوئی اگر اچھے کے پاس ہے اچھا نہ ہو، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اوپر اچھا ہے اندر اچھا نہیں. تو جو اچھا باہر ہوگا اور اس کے پاس کوئی چلا جائے تو پھر وہ ఊరికేస్తా ఉన్నారు.
అలాగే మా నాన్న వచ్చిన అంటే వాక్యాలు ఇస్తాయి
మధ్యలో
Yeah. सकते हैं।
मौलाना फरमाते थे मैं जानता हूँ इस किताब से लाखों आदमी की इस्लाह होगी, उसको फरमाएंगे आप नजर लगाइए उस किताब का मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह ताला ने उससे कितने लोगों की कर और है भी किसी किताब हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने इस्लाह करने का गैर मामूली मलका के का फरमाया। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह जो है इसी इस्लाह कैसे की जाए यही तरीका है। फातिमा के नाम पर एक गिरत हुआ करती थी सहजक के नाम पर, हम लोग जानते भी नहीं थे, यहाँ मालूम नहीं हमारे यहाँ इलाकों को उससे जानकारी उस जमाने में थी। और मैंने बताया हमारे मौली आमिर साहब ने मकामी होती है वक्ती होती है, बिजन गई और आपने इलाका छोड़ा बिजन गई पहली दीदी की सहजक होती थी उस वक्त जो बादशाह ने उनके वालिदा मुहतरमा भी दीदी की सहजक करती थी। मौलाना मना फरमाया वो मौलाना से खानदानी ताल्लुक भी था, वह गलत करती थी, मौलाना के घर वालों का नशा ठाकुर होते हैं तो उन्होंने बुलवाया सुना है इस्माइल ने दीदी के सहजक से रोका उल्ला फैलाओ बोली इस्माइल को। मौलाना नहीं कहा अंदर गए अंदर से उन्होंने कहा कि सुना है दुनिया इस्माइल दीदी की सहजक से रोकते हो, तो मौलाना ने बड़े उनका अंदाज कहा इस्माइल की क्या मजाल से रोक सके दीदी के मिया ने रोका। कहने का अंदाज देखिए इस्माइल का कि क्या मजाल से रोके बीवी के मियाँ ने यानी रसूल पाक अलैहिस्सलाम और सलाम ने रोका है, तो कहते अच्छा तब तो मैं भी नहीं करती तो मैं भी नहीं करती। पुरानी वे औरतें थी अल्लाह वाली और मालूम नहीं था मालूम उसमें पड़ गई थी, अब उनको बताया गया तो उन्होंने मौलाना सौदा कर ली। तो अहिंसा होता है कहने का ऐसे ही एक मरतबा मौलाना भाई शहीद रसूलुल्लाह ने बहुत गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। मौलाना एक तरफ तो अल्लाह ताला ने उनको इस रास्ता तरीका अच्छा था, दूसरा जीरो सिखा देता बताई। एक बार तो बादशाह कहीं से उधर रहा था उनके तो उसने यू सलाम किया हाथ से तो बोले ना अंगूठे से यू किया तो सब हैरत में पड़ गए। बादशाह को ऐसा जवाब देना आसान बात थोड़ी है, बादशाह गुजर के अदब से सलाम कर रहा तो मौलाना ने उसके जवाब चेंज दे दिया। तो मौलाना जी लोगों ने कहा कि आपने ऐसा जवाब दिया, मौलाना ने फरमाया उसने ये नहीं किया मैंने ये नहीं किया, न वो सलाम न ये सलाम, ऐसा सलाम ऐसा जवाब। अरे सलाम का तरीका होता है ना, आजकल हमारे यहाँ ये बहुत से लोग इशारा करते हैं मुँह से पान खाए होते हैं खेल ही खाए होते हैं, एक तो मतलब काम वो करते हैं दूसरा मतलब काम ये करते हैं यूँ करते हैं, इसलिए अगर असलाम अलैकुम कह दे तो मुँह से निकल पड़ेगा तो वो बंद है वो खुला रखा दीजिए ताकि सलाम करना आसान हो जाए और फिर कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह या अस्सलाम वालेकुम पूरा सलाम करना चाहिए और उसके बाद जवाब देना वाजिब है। वालेकुम सलाम जैसे कि मौलाना ने वाजिब को करवाया आपके वाजिब करवाया और सलाम को फैलाने को कहा, लेकिन एक बात और उसमें याद रखी मैं जाता हूँ उसमें रखता हूँ हदीस में है मौलाना भी जानते हैं वो ये है आजकल सब परेशान रहेंगे बरकत नहीं घर सब परेशान है, अभी घर वालों को सलाम करो तुम्हारे ही बाइक से बरकत हो बरकत के लिए तालीम देखते चक्कर पड़े रहते हैं वजीफे के चक्कर पड़े रहते हैं और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वजीफे को नहीं देखते। आपने जो बता दिया है मैं कहा करता हूँ कि हजरत रसूल पाक अलैहि सलाम को सलाम डायरेक्ट रसूल पाक अलैहि सलाम को सलाम है आपके बराबर न कोई हुआ है न है न होगा, ऐसे ही आपके बराबर न कोई तबीब था न है न होगा, आपसे बड़ा डॉक्टर न था न है न होगा, आपने फरमा लिया वो इस्तेमाल कर लिए फिर देखिए कितना फायदा होता है। जो बड़ा डॉक्टर होता है वो एक दवा देता है और ये हमारे घोड़ा साहब होते हैं इसकी मुट्ठी में दवा देते हैं इसे बेचारों को मारा मालूम नहीं होगा तो वो जितनी दवा देते हैं इधर से तो हालो पिए हो जाए इधर से खालो पिए हो जाए इधर से खालो पिए हो जाएगा तो पेट और सर और अंदर जितनी चीजें सब मिला देती है वो दवा देते हैं। और जो बड़ा डॉक्टर होता है वो प्रेम जमा देता है, लेकिन एक बार खाने के बाद मुकम्मल शिफा। ऐसी जनाब रसूल ने कहा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दवा लेके फरमा ले उसमें शिफाए कामिल है, और वो एक मामूली बैक्टीरिया है लेकिन जो खाएगा शिफा पाएगा। लेकिन ये नहीं कि बाद होते ना खान पीमा, हमारे दादा जी बड़े डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर भी थे और नजरे के फादर भी थे, देवबंद के फादर भी थे और उसके साथ एमबीबीएस भी थे, हकीम भी थे और होम्योपैथी भी पढ़ी थी उन्होंने। एक मरीज आया तो उसको उन्होंने होम्योपैथी की दवा दी और होम्योपैथी की दवा बड़ी हकीर होती, बहुत पैसे वाला आदमी था, उन्होंने दवा दी उस जमाने के दवा एक पैसे में, तो उसने उठाई दवा फेंक दी, वहाँ दवा उठाकर फेंक दी। तो दादा ने कहा यही दवा उठाकर दूसरी शीशी बना दो, दस रुपये ले लो, दस रुपये वही दवा फिर दूसरी शीशी में दिए, पाँच दस रुपये में इसको दे दो। बड़ा खुश हुआ, आप उस जमाने के दस रुपये का मतलब इसको फिर दे सका, आज की बात थोड़ी सौ सालों में। तो अब दवा जब नहीं ली थी बस वो पूरा खाने खाना शुरू हो गया, यकीन हो गया कि दवा खरीद दी है अच्छी दवा। ऐसी हम लोगों का मामला यकीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने घर वालों को सलाम करो, घर पर धोती समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बात वही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को मालूम कर ले, यकीन पैदा हो जाए तो ये दवा बिल्कुल काफी और शाफी है। इसके अलावा भी आपने बरकत की और चीजें बताई क्या करना है, उनमें देखिए भी है। दोबारा मौलाना इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़ी आदमी थे, बड़े बेबाक आदमी थे, उसको इशारा किया और ये तमीज की बादशाह को ये सलाम को पहले से करना चाहिए। और जो मैं आपको बता दूँ सलाम करने से जवान में सलाम करना चाहिए, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और अगर दूर आदमी है तो इशारे की इजाज़त है, लेकिन इशारा इस तरह करे कि जवान से भी कहे, तन्हा इशारा काफी नहीं। ये वो गलती लोग करते हैं, और तन्हा तो इशारा करता है तो दो इशारे हदीस में माना है, एक यहूदियों का इशारा एक ईसाइयों का इशारा, और समय उंगलियों से यहूदी इशारा करते हैं और हथेली से ईसाई इशारा करते हैं, दोनों ही करते हैं। मना किया है हदीस में, न यहूदियों वाला सलाम करो न ईसाइयों वाला सलाम करो, इस्लाम वाला सलाम करो। इसलिए तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो मौलाना ने असल तंबीह की तो तंबीह से मालूम होना चाहिए कि हम सलाम करें और सलाम सबको करें जैसे मौलाना कहा। और ये कयामत की आलामात में जो बताया गया है कि लोग पहचान पहचान कर सलाम करें, क्योंकि सलाम इस वक्त लोग मुलाकात के लिए और आदतन करते हैं, सलाम की नियत नहीं होती कि मेरा भाई है अल्लाह को सलामत रखे, इसलिए सलाम नहीं हो रहा, बल्कि एक आदत पड़ गई और अब खुदा हाफिज की एक आदत पड़ गई। मैं कहीं दूर तो परेशान हूँ, लोग बेहूँ करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और वो जो बात करती है कहते खुदा हाफिज, अरे खुदा तो आप ही रहिए, इसलिए मैंने किया खुदा का हाफिज नहीं होगा तो कौन हाफिज होगा, खुदा हाफिज है लेकिन सलाम करना चाहिए, क्या हुआ खुदा हाफिज साहब चाहिए। और ऐसे ही लोग मिलते हैं आप ही कहते खुदा हाफिज सलाम नजारन, अरे भाई सलाम करो, हर जगह यही होता जा रहा है कि शैतान रास्ते में हटाता रहता है, ये फैशन चल गया खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज, फैशन के तौर पर किसी लफ्ज का इस्तेमाल सही नहीं। अजरत तो इसके बाद सुन्नत से काम करना है, हमको इसके बाद सुन्नत करनी चाहिए। खुदा रात हजरत मौलाना इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया इस्लाम के बारे में लिखा है, वो अजीब गरीब वाकया है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते क्या करते थे तो हैरत हो जाता हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने एक हदीस माता है, तीन चीज़ें काबिल एहतराम है, एक तो जान काबिल एहतराम है, दूसरा माल काबिल एहतराम है, तीसरे आबरू हमारी भी और आपकी भी। आपकी तो सब समझते हैं, बहुत से लोग कहते हैं इनका माल ला लो, इनकी आबरू नाम ला लो और इनका खुद जान ला लो, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि अपनी जान भी कोई नहीं ले सकता और अपना माल भी गलत नहीं खर्च कर सकते, आपका नहीं है ये अल्लाह का माल है, इसलिए खर्च आप गलत नहीं कर सकते, ऐसी जान भी अपनी नहीं दे सकते, ऐसी आबरू भी अल्लाह ने आपकी रखी है, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप बे आबरू, यानी आप बे इज्जत को एक काम भी नहीं करना चाहिए, दूसरे को बे इज्जत करना बहुत बड़ी बात है, अपने को भी करना चाहिए। तो ऐसे ही एक मतलब हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह मस्जिद में बाल फरमा रहे थे, अचानक जब बाल कह के बाहर निकले
देखा के बाहर हवा से जा रही है, तो उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, मुसलमान है, उन्होंने कहा हम क्या करती है, बात पेशा करती है, अरे मुसलमान होकर पेशा करती है, और जोश बनाए मानना अगर मुसलमान है तो मेरी बहने हैं और मैं इनके साथ आऊंगी और इसी मैं इनके महीने में जाऊंगा। लोगों ने कहा हजरत कभी ना जाइएगा, आप हजरत शाहबुल्ला के पोते हैं, आप शाहबुल्ली के भतीजे हैं, आपको हर आदमी जानता है, अगर बड़ी मदद दवा गए तो क्या कहने का कहीं इंतजाम करेंगे आप और क्या क्या होगा आपके साथ, नहीं और फिर जोश में आकर क्या बात कही आज है कोई इसका ऐसा करने वाला। मौलाना कहा कि मियां तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं तो उस दिन का मुंतजर हूँ जिस दिन मुझे दहली के करीब पूछो में गंधे पर बैठा कर मुँह पर तालीम लगा कर दौड़ाया जाएगा और रुसवा किया जाएगा और न खुदा के हुजूर की पेश कर सकूंगा कि अल्लाह ने जो कुछ पाए मेरे लिए। ये जज्बा मौलाना का था और फिर मौलाना तशरीफ दे रहे, अजीब वाकया है, मौलाना तशरीफ दे गए गली में और जहाँ घर वाला खटखटाया उनका मजलिस हो गई, जरा कुछ लोग थी और सारी जमात थी अच्छी तरह पर इस्तेमाल की बात। मौलाना जब नीचे घर वाला खटखटाया तो ऊपर से बड़ी थी जो करवा रही थी प्रोग्राम, उन्होंने कहा भाई देखो कोई मंदिर में लाया नहीं किया जाता, एक औरत उसको से उतरी और मौलाना कुछ देना था, मौलाना ने घबराया कि मियाँ बीवी मैं कुछ देना नहीं, मुझे कुछ सुनाना है, मैं दूसरे रंग का फकीर हूँ कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो उसने ऊपर जाकर कहा सही बात भी है, पैसे देखा नहीं कहता कुछ सुनाऊंगा, तो बड़ी जगह बुला लो एक गाने वाला और सही मुसलमी के लिए भी कोई गाने वाला है बुला लो मौलाना ऊपर। अब जब मौलाना ऊपर तशरीफ ले गए तो जाहिर है कि मौलाना बदल कर गए थे, उंगली उंगली पहन रखी थी ताकि पहचाना ना जाए कौन फकीर के लिबास गए थे, लेकिन मौलाना मौलाना थे गुदड़ी का लाल, बड़ी जी ने फौरन पहचान लिया कि शाहबुल्ला का पोता खड़ा है, आज जोड़ कर सामने आ गई तो हुजूर हाथ जहाँ जल्दी जला कैसे आ गए। तो मौलाना घबराया, बस मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ सबको जमा कर, और मौलाना बड़े खुश रहान थे जितनी आए थे वे हयाई सिलसिले की थी, सब मौलाना बहुत ही खुश रहानी के साथ तिलावत फरमाई और उसके बाद बात फरमाया और इतना जबरदस्त बात था कि सारी औरतें रोने लगी, गिरिया सारी हो गया सब पर। और फिर मौलाना फरमाया कि आज तुम तौबा कर रही हो और तौबा करने वाला चाहे उसने सबके कमल लाल पाला, जब तौबा वाला अल्लाह सब अल्लाह तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसा बना देता है जैसे गुनाह उसने किया ही नहीं, तुम सब तौबा करो और जो तुम में से जवान है वो शादियां करें और जो बूढ़ी हो चुकी है वो अपने घरों में जाकर दूसरे घरों में जाकर कमाएं और वहाँ बर्तन मांझे या काम करें उसके जरिए से अपना पेट पाले, लेकिन हराम के काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, पूरा महंगा मौलाना की इसराफ से खाली है। ये इसराफ होती थी तशरीफ ले गए और इसराफ फरमाई। तो मेरे भाइयों जरूरत इस बात की हमारे का वो जज्बा हो, और बात यह है कि हमारे अंदर एक जज्बा मोटा हो चुका है और हम इस वक्त एक मुर्दा कौम की हैसियत से जी रहे हैं, हमारे जिंदगी की कोई रमक है नहीं, इसलिए नहीं है कि आज दुनिया ही हमारा मद्देनजर, दुनिया ही हमारे मद्देनजर है, हमारे सामने से आखिरत की फरामोश हो चुके हैं, हम आखिरत को भूल चुके हैं, हमको दुनिया से जाना है और दुनिया आखिरत के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है वो आज हमारे जहन में निकल गया। दुनिया फानी थी आखिरत बाकी थी, लेकिन हम लोगों ने दुनिया को बाकी और आखिरत को फरामोश कर दिया और उसके नतीजे में जो तसव्वुर होना चाहिए कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, आखिरत के लिए आए हैं, दुनिया में हम इसलिए रह रहे हैं कि हमको यहाँ कुछ करके आखिरत बनाना है, आखिरत को संवारना है। इस तरह सफर करने वाला हदीस आया है कौन फिर दुनिया का क्या बनी और आदमी हो सभी जिस तरह अजनबी रहता है इस तरह दुनिया में रहो, या सफर में जाने वाला मुसाफिर होता है अभी मैं आ रहा हूँ उसमें देर से तो कोई थ्री टायर में था, कोई टू टायर में था, कोई फर्स्ट क्लास में था, कोई ए सी में था, कोई ऐसे ही था, ए सी में हो जाए सही हो लेकिन है सब ट्रेन में हो ही तरह आराम से है ए सी में है और कोई उसमें है, लेकिन सब समझ रहे हैं कि हमको पहुंचना है भोपाल या सिरोज पहुंचना है और इस वजह से मुतमिन नहीं गाड़ी उसी पर जा रही है, लेट सही और परेशानी सही कि खाने को नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है
समाचार और ऐसा किसी ने नहीं किया। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी गाड़ी से सफर करने वाले को कि अपने घर में पलंग उठा लाए, वहाँ से फ्रिज उठा लाए और वहाँ से सारा सामान ले आए कि बगल उसके लिए सफर ही नहीं कर सकता। वो तो सफर में जितना हल्का रहे उतना अच्छा है। और इस वक्त तो वही इंतजाम भी कर दिया जाता है और लोग अपने हैंड बैग ले लेते हैं और सब अपने चले जाते हैं और समझते हैं जितना हल्का हो उतना अच्छा है। हवाई जहाज में भी लोग सोचते हैं हाथ में सफर अगर हैंड बैग है तो हवाई जहाज में ऊपर ले गए और सीधे निकल कर चले आए। अब उस बात का सामान आ रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जेल में मिलेगा, परेशानी अगर होगी तब यही करते हैं। दुनिया का मामला बस यही है कि अगर हम दुनिया में ये समझते हैं कि सफर कर रहे हैं तो अपने सामान को हल्का करेंगे ताकि हम इतमान से गुजर जाए। इसलिए जो हदीस में आता है जो बराए महाजरीन है 500 साल पहले जो अगलियाँ हैं उसमें जन्नत में पहले चले जाए जाएगा कि उनके ना यही कहें ना उनकी होती कोई जगह ही है हैरान के बराए और कहा कोई चीज सस्टम वाली तो नहीं है। उन्हें लगता है इस साल का ये यही जो बस्ती है उससे निकल जाएगी उस जगह से निकल जाएगी इतमान से उन फैला दिया निकल गए और जिन्होंने कहा नहीं है यहाँ कुछ है कस्टम का सामान बैठ जाएगी। मैंने खुद देखा है कस्टम वाले कई कई घंटे फंसे हुए एक एक उनका खोला जा रहा है। अब तो खैर अंदर से लाइट से देख लेते हैं और पता चल जाता है क्या रहा है और क्या नहीं रहा है उन्हें पकड़ लिए जाते हैं। पहले सब खोल से देखा जाता था। तो आखिरत में भी जो अल्लाह अगर ये चाहेंगे कि जन्नत में सीधे चले जाए तो हल्के बोल कर इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने दीन के हालात उठाकर देखिए और लोग घबरा गए मालूम हुआ कि आप अंदर तशरीफ ले गए और बाहर निकल कर आए और सोना था कि मैं भूल गया था उसको बांटना रह गया तो फिर अल्लाह क्या सोचेगा उस नबी के बारे में जिसके घर में सोना रखा हुआ और आपने जाकर उसको तस्वीर बनवाया। तो आपका हाल दुनिया के सिलसिले में यही था। एक मतबा साहब है ग्राम में एक सहाबी अपनी कुटिया बना रहे थे, कुटिया घर नहीं कुटिया बना रहे थे। आपने पता है क्या क्या कर रहे हो मियाँ? कहने के इसकी इतना ठीक ठाक कर रहे हैं अपनी कुटिया। कहने के मियाँ कयामत इससे पहले आने वाली है, आखिर इससे पहले आने वाली है। अरे दुनिया में रखकर क्या करोगे? आपने जहन बनाया कि दुनिया में बकल है जरूरत, लेकिन हम लोगों ने दुनिया को आखरत से बुरा दिया। सब कुछ चाहते तो दुनिया में हो जाए और इसी का नतीजा ये है कि शादियों की धूमधाम और विरासत में कटौती ये सब उसी का नतीजा है कि हर सब ये चाहता है कि हमारे पास इतना माल आ जाए कि सारी दुनिया में नंबर एक पर हम हो जाए और नंबर एक पर हो या ना हो लेकिन दिखाने के लिए कम से कम हो जाए। और उसी लिए एक शादी की शादी की तो तुम्हारा उसमें बड़े हाल में करेगा, यानी बहन का हाल ठीक है तो उनका हाल ठीक है, दोनों का हाल खराब है इसलिए कि दोनों हाल ढूंढ रहे हैं। जिसका हाल खराब होता है वही हाल ढूंढता है और जिसका हाल अच्छा होता है उसको हाल ढूंढने के दूर नहीं कि यहाँ हाल मिल जाए वहाँ हाल मिल जाए। वो तो इतना साहब के हाल है कि परेशान है ही के बाद में साहब के हाल ढूंढने की जरूरत है। हाल हमारा ऐसा होना चाहिए कि शादी एक जरूरत है, शादी जब जरूरत है तो इतना से कर लो भाई उधर सब लोग आकर इधर बैठ गए और शादी हो गई। छुप कर करने को मना किया गया है उसके बाद से खराबियों का अंदेशा था जो मना कर दिया गया। ऐलान जरूर करो, वलीमा जरूर कर लो, लेकिन वलीमा को भी तमाशा बना दिया। वलीमा तो रहा नहीं और उसका नाम भी कुछ ऐसा कर दिया और उसमें ऐसी धूमधाम थी वलीमा की फिक्र तो बाकी न रहे बाकी सब कुछ हो जाए। तो ये सारी बातें उसके नतीजे में क्या हो रहा है वो खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। हमने अभी एक काम में बताया दुबई में एक शादी थी, एक हवाई जहाज पर लड़के वाले दूसरे हवाई जहाज पर लड़की वाले और हवाई जहाज पर दोनों बराबर चल रहे थे और वही निकाह हुआ हवाई जहाज के ऊपर। और उसके बाद जब जमीन पर आए तो जमीन पर पैर नहीं टिके, समंदर के अंदर दोनों चले गए। यानी जो समंदर के अंदर होटल है वहाँ वलीमा हुआ, ऊपर निकाह हुआ नीचे जाकर वलीमा हुआ और उसके बाद जब निकल कर आए तो हनीमून अमेरिका में हुआ और जब लौट कर आए तो ये अपने घर पहुंचने घर हो गया।
क्या बुझे की शादी से खत्म हो गई, एक महीने में सारा पैसा खत्म हो गया, और कितने पैसे लगे इसके बाद खिला। अभी एक काम में सुनाया, एक काम में शादी की जहरी में कोई काम है, उन्होंने शादी की 1,000, अपनी लड़की की शादी की, उसमें उन्होंने लाखों ऐलान के, इतने लाख में मैं शादी करूंगा। अब लोगों ने उनकी फिर मालूम करना चाहा कि कैसी कितनी लड़की में शान शादी करने जा रहे हैं, चुपके चुपके उन्होंने बहुत से भरी जोड़े तैयार किए और 1,000 भरी जोड़ों को जमा किया और हर भरी जोड़े में 1,00,000 रुपए खर्च किए और अपनी बेटी बेटी 1,00,000 रुपए उससे एक पैसा ज्यादा नहीं और इस तरह 1,00,000 शादियां की उन्होंने। अब अंदाजा लगाइए, एक ये बहन है और एक कौन बहन है, उसका वो नतीजा होगा और इसका क्या नतीजा होगा, क्या बड़ा बता होगा कि उन्होंने जितना औरों पर खर्च किया वो इस पर खर्च किया। जो मेरे भाइयों और दोस्तों, इसका असर तस्वुर गलत हो गया है हमारा, और जब तक तस्वुर सही नहीं होगा, हमारा हमारा तयन सही नहीं होगा और यूँ कहने का अकीदा सही नहीं होगा तो हमारा काम बनने वाला है नहीं, हमारी इस्लाम दुनिया में कोई नहीं बन सकता। आप तकलीफ करके चले जाइए, कहेंगे हाँ बात तो बनाना साहब बहुत अच्छी है, लेकिन चुपके से काम कहेंगे बीवी नहीं बनती, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हमारे नौजवानों को एक जगह निका पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ये हमारे निका है बैठे हुए सामने, ये ऐसे बने हैं बिल्कुल बेचारे के रुमाल भी हाथ में है वो रखे हुए हैं, और जब इनसे कहा जाता है ये अपने अम्मा अब्बा को समझाओ कि रस्में न करे और ये सब उल्टे सीधे काम न करे, तो आकर चुपके से करते बोले अम्मा नहीं मानते, अम्मा नहीं मानती, दादी नहीं मानती, नानी नहीं मानती, और ऐसा महसूस होता है कि इनका ज्यादा इतिहास या तो ऐसे कुछ पहले ही नहीं, ऐसा ही होता है बिल्कुल। यानी पूरी जिंदगी माँ बाप को रगड़ दिया, बाप ने कहा ये काम और नहीं करेंगे, कुमार ने कहा और नहीं करेंगे, हमारे काम उधर चले जाओ नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी एक काम की है। जब निकाह का वक्त आया और हमारा साथ समझाया अम्मा नहीं मानती, बड़े माशाल्लाह अम्मा के मानने वाले, अब्बा के मानने वाले, हमें जहन नहीं बन चुका है, हालात हमारे जहन के खराब है, ये अंदर शादी लगाने की जरूरत है कि हमारा दिमाग भूल जाए सही हो जाए, और जब दिमाग में खन्ना खड़ जाए कौन भी कर सकता है, हमारे अल्फाज भी कर लेंगे दिल में, ये अल्फाज नहीं ठीक कर लेंगे, बल्कि हमको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, जरा इस्माइली किरण पैदा करना पड़ेगी, ये इस्माइल सही रह सकता आएगा, वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा और इस्लाम का वो उनका हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, जो उनके अंदर गैर मामूली थी, उनके अंदर एक बात याद नहीं बहुत बात याद है, बहुत गैर मामूली आती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ तो आ जाए, इसके मानने वाले हैं हम। बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम लेते हैं, उनका नाम लेना समझते हैं हमारे लिए काफी है, ये नहीं नाम लेने से कभी कुछ नहीं होगा, जब तक कि उनके नक्शे कदम पर न चले और वो इस वजह से आगे बढ़े जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम और सलाम के नक्शे कदम पर चले थे और उनके मुताबिक उन्होंने अपने को ढाला था। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को भी उनके नक्शे कदम पर चलाएं और उसके लिए हम मेहनत करें और कोशिश करें, तो फिर नतीजे ये होगा। हमारे खुद हमारे डॉक्टर साहब ने अपनी बेटियों का निकाह किया, कपड़े से भी सिलवाए, और ये अजीब बात है कि उन्होंने दो अपनी बेटियों की शादी की, जितने सीखा और सुना जो शादी है किससे का, उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी की, बहुत बड़े जानकार थे वो, पैसा भी ऐलान किया था, मैं बहुत जानता था उनका, दो बेटियों की शादी की, मस्जिद में ऐलान कर दिया कि भाई सब बैठ जाए, मेरी बेटियों का निकाह है, और एक तरीका उनके भांजे होते थे उनसे था और एक बाहर से आए उनसे था, तो उनके अहिया ने कहा कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो कपड़े बना ही दो, घर वाले के लिए नहीं बना रहे हो, उनका घर बनाएंगे तो घर वाले के लिए बनाएंगे, उनके क्यों बनाए, इसलिए कहनी माता है जो अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करेगा वो है अल्लाह को बहुत पसंद, रिश्तेदार रिश्तेदारी को निभाना ये अल्लाह को बहुत पसंद है, और आजकल सब ज्यादा किसी को लोगों ने तोड़ रखा, उन्होंने कहा अगर सिलवाए तो पहला हाथ तो इनका है कि मानते हैं वो तो बाहर के आ रहे हैं तो कहा कपड़े सिलवाने की जरूरत है कुछ नहीं सिलवाऊंगा। वो आए थे मामूली कपड़े पहन कर ये समझ कर भी आए थे कि कपड़े मिलेंगे लेकिन उनका कपड़े शादी की इज्जत किए यहाँ बैठ जाए ये कोई सामान से नहीं कहता। दोनों बैठाया और दोनों ने लिखा काम दिया वो मुझसे खुद एक दिन कहने लगे तुम डॉक्टर काम में अपनी बेटी से लिखा किया और उसके बाद जो उन्होंने दावत यानी खाना खिलाया तो कह रहे थे भुइया का सारा सबका का खाकर दो चार आदमी क्योंकि और आए मेहमान शोरबा और बढ़ा देना ताकि सब खा सके। तो इस तरह उन्होंने विकास किया तो पिता की गर्दा करना ऐसी अदा बनाई कि आज उन दोनों की शादी मैदान होकर मतलब हमारी है कि उनके औलाद को अल्लाह का ऐसा का इंतजाम किया कि सारी दुनिया में हिदायत का काम उनसे हो रहा है। ये है देखने में शादी शादी लेकिन बरकत खाली और आज सारे पैसे लगा लेते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी परेशान है। एक तो फर्ज ले लेते हैं बैंक में ले लेते हैं और किसी का फायदा बैंक से हो जाए तो हो जाए। मुसलमान को तो आज तक मैंने खर्चे नहीं जो मुसलमान बैंक से सूरी फर्ज ले लेता है वो कभी खर्चा नहीं और अगर बनिया से ले ले तो क्या खुद बनिया हो जाए। मैंने आज तक किसी मुसलमान को घर में नहीं देखा जिसने भी सूद में कदम रखा वो उसका सारा काम बेसूद हो गया किसी काम का नहीं रहा। इसलिए ये इतनी खतरनाक बात है कि आजकल अमूली तौर पर लोग सूद ले लेते हैं और सूद में आधा रिश्ते हजार रुपया शुरू कर देते हैं। हालांकि हदीस शरीफ में आता बड़ा शरीफ आता है कि अगर सूद लेना देना भी ढोकते तो अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार होगा। ये किसी के बारे में नहीं है न नमाज छोड़ने के बारे में ऐसा कहीं पढ़ा और न ज़कात के सिलसिले में ऐसा पढ़ा लेकिन सूद के सिलसिले में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कुरान में भी इंसाफ धर्म के हक में लोग आए ना ऐलान कर लो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए सारी सरकार से रसूल से जंग करेगा उसका हाथ खड़ा होगा। जैसे कि हदीस में एक जगह पर आया है मन आ जाए वली है सफल आने सूद के हक जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे जाने से करता हूँ। एक तो वली से दुश्मनी के बारे में आया है और एक सूद खोर के बारे में आया है इन दो के बारे में एक में हदीस में आया है एक में कुरान में आया एक के सिलसिले में कितनी खतरनाक बात है कि आजकल सूद पर लोग पढ़ रहे हैं और पैसे के हलाल और हराम का तो कोई सोचने का मसला ही नहीं उनका नहीं रहा जिनको करना चाहिए कि हमारी मदारिस में एहतियात नहीं रही तो आप क्या करें। मैं तो मदारिस वालों को भी कहता हूँ कि देखना चाहिए कि देने वाला कौन सा पैसा दे रहा है यहाँ का पैसा तो नहीं दे रहा है मदरसों में हराम खिला खिला के पढ़ने वालों को भी धंधा कर दिया जा रहा है। हमारे महाबा जानाबा राजस्थान दो शेष है राजस्थान की बात है करीबी में जयपुर जानाबा दो शेष बैठे हुए तुम्हारे पास एक शेष दूसरे में हमारे सामने कह रहा कि ये वो देश का है मूर्ति वगैरह इस तरह चीजें तो उसने हंसकर कहा कि हाँ ये सब तो करता हूँ लेकिन मदरसे में चंदा दे देता हूँ और मौलाना लोगों को हदिया भी दे देता हूँ। अब जो थोड़ी कसर थी वो भी गई। अरे पहले अल्लाह के मंदिर होते थे वो जब अल्लाह के नेक बंदे आते थे तो बहुत कोशिश करते थे कि कोई भी हराम रुतवा न जाने पाए और मदरसों में जो पैसा देते थे वो भी बहुत अच्छा पैसा देते थे ताकि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से परवान चढ़े और किसी के नतीजे भर भर अल्लाह वाले ऐसे बहुत पैदा हो गए। हमारे हजरत मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह जब ये छोटे थे संस्था सुनाने से उनकी एक खिलाई थी बच्चों को औरतें खिलाती थी वो गरीब बिल्कुल घटे हाल रहती थी तो करीब में गाँव में गई वहाँ हिंदुओं का चालीसवां था कोई मर गया तो उसका चालीसवां खैर बीसवां जो भी रहा हो तो वहाँ खाना बनता था पूरियाँ तो बेचारी गई कि बैठ के खाने लगे मौलाना छोटे थे उन्होंने चाहो से लुकमा तोड़ ली उन्होंने कहा तुम खा लो उसमें से तुम्हारी भी है छोटा सा बच्चा गोद में है उसको भी खिलाने नहीं दिया इसलिए कि जानती थी इनके पेट में अगर चला गया तो हराम होगा मेरे लिए सारा जाए। तो बचपन से जब इसका हिफाजत की जाती है तो हमेशा ठीक रहता है और जब बदन का मामला ठीक होगा तो बातिन ठीक होगा। बदन का बातिन से बड़ा ताल्लुक है, इसलिए बातिन अंदर को कहते हैं, बदन पेट को कहते हैं। पेट अगर ठीक रहेगा, लक्मा हलाल का जाएगा तो बातिन अच्छा होगा यानी दिल अच्छा होगा, और लक्मा हराम का जाएगा तो जाहिर कुछ होना नहीं। हजरत साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाब रसूल पाक अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने नाराज किया, या अल्लाह का रसूल आप बताइए मैं कैसे मुस्तजाबु दावत हो जाऊँ, मैं मुस्तजाबु दावत बनना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया लक्मा हलाल कर लो, बस लक्मा हलाल खाओ मुस्तजाबु दावत हो जाओ। लेकिन आजकल तो ये लोग मुस्तजाबु दावत होने नहीं दे रहे, जिसके यहाँ जाओ खाना खाने मशरूम होता है उसका खाना, कुछ ना कोई हराम की आमिश होती है और उसमें कोई ना कोई मशरूम की आमिश होती है, तो खाने के बाद क्या होगा। अजाज ने भी ये तरकीब की थी, अजाज के बारे में बारिश की बातें आता है कि उसके जमाने में कुछ लोग थे जब कोई हाथी माता में बंधवा करते थे, उन्हें जाता ना अजाज ने कहा मैं ठीक करता हूँ उनको, हराम का पैसा दिया, दावत की उन सबको खिला दिया, कहा बंधवा करो कुछ हो गएगी। ऐसे ही जब सारे लोगों को इस तरह का हराम का खिला दिया जाएगा तो क्या असर रह जाएगा, न बातों में असर रहेगा। आज जो बातों में असर नहीं है, हमारी जबान पर असर नहीं है, हमारी तकरीरों में असर नहीं है, उसमें एक वजह भी है कि हमारे पेट का हला लम्हा नहीं जा रहा है। और वो क्यों नहीं जा रहा है कि आज हमाम ने पैसे वालों ने यह तय कर लिया है बस पैसा होना चाहिए, कहीं का कोई कुछ नहीं देख रहा है, बस पैसा। भाई का मारे बैठे हैं, बहन का मारे बैठे हैं और पड़ोसी को मारे बैठे हैं, फंस ले लिया है, हम पता नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो फंस ले लेता है उसका मामला हल होने वाला नहीं, आप रखते हैं उससे बचने न निकल रहे जब तक अदायगी नहीं हो जाएगी तब तक पीछा नहीं छूटेगा। और विरासत का जहाँ मामला है तो विरासत के बारे में तो सबने शिक्षा लगी, हालांकि एक एक पास पैसे के हिसाब होना चाहिए। अगर खाली रमजदारे जब देवल पढ़ने गए वहां से वापस आए तो जो भी जमींदार आती है तो उनको भी शुमा हुआ कि हमारे ऊपर वालों ने कोई अदायगी नहीं की। हजरत खान जी को जहां तक उनके ऊपर के पुरखे मिले सबका हिसाब करवाया है एक पैसे का, और सबकी अदायगी जितनी कर सकते हैं सभी सब जाकर खाली हुआ है, ऐसे खाली थोड़ी बन गए। और जिन लोग क्या अल्लाह ने ये रखा है तो उनकी अदायगी होती रहती है, अल्लाह का फल है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, आज तो पैसा किसी का दबा लेना मार लेना हुनर से चले आता है, कैसे इससे निकलवा लिया जाए। और पहले ये होता था कहना सुना ना आज तक हमें कानून लगे हुए हैं, हर नौकरी में लगे हुए हैं, तो ये सोचते थे किसी का इसको अपना ठीक करने और हराम पैसा आने लगे। लेकिन आजकल उल्टा होता है, हलाल कमा रहे हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं कि वो हलाल से हराम तिजारत को खराब कर लेते हैं अपने, और जो पेशे जिसको पाकिदा रोजी के हैं तो उसको भी खराब कर लेते हैं। इसके नतीजे में आज हालात हमारा काम कर जा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि बुनियादी तौर पर ये समझे कि हम आखिरत के लिए दुनिया के लिए नहीं, असल आखिरत साहिब ईमान का ताल्लुक आखिरत से होता है, दुनिया से नहीं होता। दुनिया दुनिया में वो रहता जरूर है लेकिन ताल्लुक दुनिया से नहीं होता, ताल्लुक आखिरत से होता है। और ऐसे ही उसका हाल ये होता है कि वो दुनिया अपने जरूरत रखता है और चाहता यह है आखिरत में उसका काम। और यहाँ जितना अल्लाह के रास्ते में लग जाए उतने अच्छा है, और अपने अहसास को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि जो बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर ध्यान दें और उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। और खासतौर से हमारी खवातीन अगर ये मददगार हो जाए तो हम हमारे हिंदुस्तान में काफिया बनाकर सुनाकर अपनी बात पसंद रखेंगे, वो भी जिस बात में करता है। मौलाना साहब मेरी रिश्तेदार थी, उनकी शादी भी बहुत बड़े अस्तर थे, कोई मौलाना ताल्लुक रखते थे लेकिन वो कुछ विश्वास वगैरह भी ले लेते थे, कुछ हम हमें बड़े अस्तर थे। तो जब वो घर में आई शादी के बाद तो पहले ही रात उन्होंने कहा कि मेरी शादी आज हो गई है, अल्लाह ने मुझे भी करना दिया है, आपके पास मैं आपके साथ रहूंगी, आप मेरे शमर मैं चाहती थी लेकिन एक चीज की ज्यादा चाहती हूँ आज ही वो ये है कि मैं अपना खाना अलग पकाऊंगी अपने पैसे आपके पैसे तो आपका खाना पकाऊंगा पकाऊंगी इसलिए आपके पैसे जैसे हैं पास जाने तो एकदम सन्नाटे में आ गए कहने लगे थोड़ी देर स्कूल बैठे के बाद ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा बोले सब घरों में चर्चा होगा कैसे खुशी की होगा अपना खाना अपने पैसे से पकाती है और घर वालों का खाना हमारे पैसे से पकाती है पूरी बिरादरी चुरा कर जाएगी तो उन्होंने कहा कि बिरादरी में जा कर जाने का थोड़ा आपको जन है और तो मैंने हज में नाच करके उसका बहुत है बस उसी वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम जैसी औरत पता फरमाई है आज से एक पैसा रिश्वत का रूहानी बेटी समझाया कैसे तरीके से अगर उसकी और कैसी बार रहोगे नहीं ये भी तरीका सही था इसलिए औरतों को भी समझाने का तरीका होना चाहिए और मामला करने का तरीका होना चाहिए मामला लड़ते हैं और इसमें जबान का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल सब का सही इस्तेमाल होना चाहिए और ये उसी वक्त होगा जब तालीम सही और अगर वही तालीम होगी जो हमारे मोदी साहब ने कहा कि उसके बाद औरतें क्या बनेगी और क्या बन रही है जिससे पूरा पूरा कल्चर हम तो ये कहते हैं पूरा कल्चर कल्चर है कि उसको देख कर बालकों और सड़कों पर जाकर जब आदमी देखता है ऐसा महसूस होता है शायद वापसी नहीं हो पाई जैसे पंचर हो जाए पंचर एक तो वो होता है अगर सीट से चली गई तो जाकर बनवा लिया और एक तो वो होता है पूरा भ्रष्ट हो जाता है यानी बिगड़े हो जाते हैं पहिए से कि उसको बदला जाता है ठीक नहीं किया जाता बाल सफर पंचर को देखकर अजीब मामला होता है पंचर नहीं है बल्कि भ्रष्ट हो गया अल्लाह ही इसकी हिफाजत फरमाए लेकिन सब उसी पर भागे चले जा रहे हैं जन्नत होगी एक जहन्नम जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम में जाएगा और जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो जन्नत में जाएगा ऐसी इस पर अगर आप तालीम में चले जाए यूनिवर्सिटियों में चले जाए और बाजारों में और मार्केट में चले जाए ऐसा कैसे होता है जन्नत में आने बने हुए सामने हुए लोग और लड़के और लड़कियां बेहयाई के साथ एक साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हर समय ऐसे कर रहे हैं तो समझते वाकई जन्नत है अपने लड़के को भी यहाँ भेज दो जन्नत नहीं है इनके कमरों में जाके पूछिए एक मालूम का दो गोली खाता है तीन नहीं आती दूसरा चार गोली खाता है और जब चार के लिए नींद नहीं आती कितना बड़ा गोला खाता है सो जाता है और समझता है सो गया सो नहीं गया जानना पड़ गया दुनिया भी गई आखिरत भी गई ये जितने हंसने वाले हैं ये रात भर रोते हैं इनके हंसने बदल जाइए इनके हंसने बदल देखिए इनके दिलों में पूछिए क्या बदल रही है ऐसी परेशानी में उत्तर आएंगे ये काफी बहन है ये नहीं कि लालच भरी जिंदगी का डाले इस पर तरस खाइए ये बेचारा है क्या रीत बोल करके ये कराते हैं आपको जाकर ये रोते हैं आपको जाकर ये गोलियां खाते हैं ये शराब पीते हैं और इसलिए करते हैं ताकि बम बलत हो जाए लेकिन बम बलत नहीं होता जब तक के नशा रहेगा नशा उतरेगा फिर वही अभी तो बहुत बहुत था चार डिग्री हो जाए खत्म होने वाला नहीं है और फिर उसके नतीजे में कुछ ऐसी हो रही है खुदकुशी बढ़ती चली जा रही है और जापान में प्रभाव यह है कि इज्तिमाही खुदकुशी हो रही है यानी दस दस ग्रुप आते हैं एक समय में बैठते हैं और तय होता है सबको एक साथ शूट करना है या गोली खाने के लिए बहन बहन निकालते हैं और सब एक साथ पीते हैं और चलते सब एक साथ जैसे चले और हमारे यहाँ के लोग यार हिंदुस्तान के मशरूफी लोग उनको देखकर समझते हैं जन्नत वाले आ रहे हैं ये जन्नत वाले नहीं आ रहे हैं जन्नत वाले भी इमरजेंसी वाले हैं जो देखने दिन पर लोग गर्म खाते हैं हम तो कहते हैं कि मदरसों को देखो ये संचार का जब दज्जाल की जहन्नम हो सकती है लेकिन ये असलन जन्नत है और वो सारे जमाने जो है ये दज्जाल के जन्नत को आने देखने में लेकिन ये असलन जहन्नम है और जो जिसके जन्नत में जाए दोनों जगह दस दस दिन रहकर देख लेंगे कहाँ जन्नत है कहाँ जहन्नम मैं कहता हूँ आप देख लीजिए यहाँ रहकर देख लीजिए बोरिया ने जिनों के पास और इन बोरियों के पास बैठ कर देख लीजिए जल्दी और फिर तुम उनके साथ रह लीजिए वहां जानने को मजा ना आए और यहाँ जानने को मजा ना आए वो लोग उसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें इसलिए अल्लाह ने हमको सब कुछ दे रखा है लेकिन कोई इस्तेमाल ही न करे क्या कहा जाए क्या किया जाए कैसे समझाया जाए भाई है ऐसा है करके दे मेरे को जब करोगे तभी तो मिलेगा नहीं करोगे तो क्या होगा जैसे कहते हैं दवाइए दवाइए बच्चों से कहते हैं ना वहाँ बाजार जाते हैं और वहाँ बटन दबा लेते हैं अंदर से खिलौने निकलते हैं चाय निकलती है स्टेशन पर हवाई जो होता है तो बच्चे भी जाते नहीं जाते तो उनके माँ बाप कहते हैं दबाओ जोर से दबाओ निकलेगा जोर से दबाओ तो जब जोर से दबाते हैं हाथ फटकर निकल आता है ऐसे हम लोग भी कहते हैं भाई आप लोग पहले भी देखिए आइए दो लेकिन ऐसा नहीं तो कर गया है कि हाँ भाई जानता हूँ सवाल का तो जोर पर तबीयत जम नहीं आती जानते ही नहीं जानते होते तो जरूर आते हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फिलहाल ने बताया कि बेचारे वाली ने इसे कहा है जानता सवाबे का तुम लोग तो उनका फरमाया कि मैंने बदल दिया फरमाया कि जानते कर सवाबे का तुम लोग फिर कभी ये जानकर क्यों आती तब जरूर आती जानते नहीं हो फिर मौलाना फरमाया ये सब सोने का प्याला लेकर आए और आपको मट्टी का प्याला है और आपने कहे मियां मट्टी के प्याले को तोड़ दो ये सोने का प्याला देंगे कौन क्या तुम फिर नहीं बोले लेकिन मालूम तो हो कि सोने का मिलने वाला है मालूम ही नहीं तो कैसे करोगे जो उसी में रहेगा हर उसी में रहा है जो तारीखियों में रहने वाले हैं अंधेरे में रहने वाले हैं मुझे वो रोशनी का मजा क्या जाने जो नाबीना है उनको क्या मालूम कहाँ क्या चीज रखती हुई है और उसमें क्या ऊपर अधिक कई सी चीज रखती हुई है जब वो उनके पास निगाहें होंगी नसीहत होगी और उनको नजर आ रहा होगा तो मेरे भाई और दोस्तों जरूरत इस बात की है समझे और अपने आप को इसमें लगाए तो इंशाल्लाह दुनिया में जन्नत का मजा पाएगा और जो दुनिया में जन्नत का मजा पाएगा वही आखिरत में जन्नत का मजा पाएगा और जो दुनिया में नहीं पाएगा